हरे कृष्णा। तो कल
दास्य भक्ति, दास्य भाव
की चर्चा के बाद
अब आज से हम चर्चा करेंगे
सख्य भक्ति की। वो चार्ट लगाएंगे सख्य भक्ति का,
सख्य भक्ति के
और उसके बाद वाला भी। ये भी तो रूप गोस्वामी
इस सख्य भाव को
सख्यम कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, और इसकी परिभाषा इस प्रकार से करते हैं। विश्वास मित्र वृत्तिश्च, विश्वास मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविधम ईरितम, सख्यम द्विविधम ईरितम। विश्वास मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविधम ईरितम। इसका मतलब है कि सख्यम ये दो प्रकार के हैं, द्विविधम। कौन से हैं दो प्रकार? विश्वास और दूसरे हैं मित्र वृत्ति या मैत्री। और विश्वास के दो विभाजन हुए हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो सख्यम की परिभाषा श्रील प्रभुपाद जी कैसे करते हैं इसको पढ़ते हैं। कोई पढ़िएगा।
साख्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती है।
साख्य नहीं,
सख्य। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति के भगवत भक्ति में विश्वास होता है, वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति भगवान का शुभ चिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है, वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानुष समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता।
तो दो प्रकार के जो सख्य भाव में सेवा करने वाले हैं भगवान की, उनको उनके बारे में संक्षिप्त रूप में व्याख्या श्री प्रभुपाद जी ने की है। पहले वर्ग में, विश्वास वर्ग में, वो हैं जिनकी प्रबल श्रद्धा है और भगवान में पूरा विश्वास है, और इस भाव से वो भगवान की सेवा करता है, वो भगवान का सेवक है। विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरे हैं जो हितैषी हैं भगवान के मित्र के रूप में। और इसमें एक उदाहरण श्री प्रभुपाद जी दे रहे हैं मित्र के, जो भगवान के शुभ चिंतक हैं वो हैं प्रचारक। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वैसे तो भगवान भक्त के शुभ चिंतक होते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी यहां कह रहे हैं कि जो प्रचारक होता है वो भगवान का शुभ चिंतक है। आप पढ़ रहे हैं इसको सही तरह से? दूसरे श्रेणी में है मित्र। मित्र कौन होते हैं? यहां क्या बड़ी परिभाषा की है भगवान ने, जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। तो जो भगवान के शुभ चिंतक हैं उनके मित्र हैं, इस वर्ग में वो भगवद गीता का उदाहरण देते हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि प्रचारक जो है, जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है, वो सबसे प्रिय सेवक है उनका। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रचारक भी भगवान का शुभ चिंतक हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा को पूर्ण कर रहा है और सारे बद्ध जीवों को भगवान के चरण कमलों में ले आ रहा है। अब दोनों की चर्चा हम करेंगे, विश्वास और मित्र मैत्री। हमें ये याद रखना है कि जो सख्यम, जिस सख्यम की बात यहां हो रही है, वो सख्य स्थाई भाव जो कि वृंदावन के ग्वाल बालों में पाया जाता है प्रेमा भक्ति की अवस्था में, वो उस सख्य भाव की बात नहीं हो रही है। ये जानना महत्वपूर्ण है। ये सख्य अलग है। हमें याद रखना चाहिए कि ये चर्चा चल रही है साधन भक्ति के अंग। तो ग्वाल बाल ये तो साधन भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो कौन सी भक्ति कर रहे हैं? प्रेमा भक्ति, सिद्ध भक्ति है उनकी। तो ऐसे सिद्ध भक्ति की अवस्था में वो भगवान को अपना प्रिय मित्र मान रहे हैं, परंतु यहां जिस सख्य की बात हो रही है वो अलग है। हालांकि कभी 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 ऐसे भी देखा जाता है कि भाव और प्रेम के स्तर पर होने वाले भक्त भी कभी कभी साधन भक्ति के नियमों को भी अपनाते हैं, ऐसे देखा जाता है, और इसका उदाहरण हम देखेंगे। अभी महाभारत का उदाहरण श्री रूप गोस्वामी देते हैं इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान के सख्य भाव में सेवा करने वाले जो साधक होते हैं वो इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, आइए पढ़िए महाभारत में। अच्छा, ये श्लोक जो है यहां कोई लगाएंगे इस तरफ, वो लगाने के लिए वो है वहां होगा, देखिए पीछे की ओर होगा कहीं, पीछे कहीं बोर्ड के पीछे कहीं है या नहीं? बस दो काफी है। या उस बोर्ड पे ये भी सुंदर श्लोक है, महाभारत का है। ठीक है, धन्यवाद। प्रतिज्ञा तव गोविंद मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य स्मृत्य वहां भी री होना चाहिए संस्मृत्य दूसरा वाला जरा कर दीजिए इति संस्मृत्य संस्मृत्य कर लीजिए संधारयाम्यह प्राणान संधारयाम्यहम एक मैं भी लिखना भूल गया था उसमें शायद गलत लिखा होगा मैंने संधारयाम्यहम प्राणान संधारयाम्यहम ठीक है कोई बात नहीं अगली बार आपको पूरा लिख के दें कोई बात रहने दीजिए अभी तो द्रौपदी देवी का ये कथन है महाभारत में तो क्या कह रही है द्रौपदी देवी प्रतिज्ञा तब गोविंद कि हे गोविंद आपने प्रतिज्ञा की है क्या प्रतिज्ञा की है आपने क्या है गोविंद की प्रतिज्ञा मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा नमे भक्त प्रणश्यति तो इसी को याद करते हुए बारंबार स्मरण करते हुए इति संस्मृत्य संस्मृत्य समधारयाम्यहम् तो मैं अपने प्राण को बनाए रख रही हूं और इसका तात्पर्य क्या है तो उपा जी कह रहे हैं पढ़िएगा
तात्पर्य यह है कि द्रौपदी तथा उसके पांचों पतियों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिया था ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा विष्णुदेव तक उन कष्टों का स्मरण करके कभी 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 अश्रु बहाने लगते थे उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि पांचों पांडव धर्मात्मा है तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र है तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहने पड़े रहे थे नहीं है यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे तथापि द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई वह जानती थी कि चूंकि कृष्ण उनके मित्र हैं अतएव अंततः वे उनकी रक्षा करेंगे
वास्तव में द्रौपदी पांडवों की तरह भगवान की एक पार्षद है तो भगवान जब अवतार लेते हैं इस भौतिक जगत में तो उनके साथ उनके नित्य सिद्ध पार्षद भी आते हैं युधिष्ठिर महाराज अर्जुन आदि तो द्रौपदी भी कोई साधारण भक्त नहीं है वो तो उच्च कोटि की प्रेमी भक्त है तो जो उन्होंने यहां वचन किया है जो कहा है उन्होंने वो प्रेमा भक्ति के उच्च स्तर से प्रकट हो रहा है फिर भी हालांकि ये साधन भक्ति के स्तर से वो बात नहीं कर रही है उनके साधना भक्ति के भाव से प्रकट नहीं हो रहा है प्रेमा भक्ति के भाव से प्रकट हो रहा है लेकिन फिर भी कभी कभी प्रेमी भक्त जो होते हैं प्रेमा भक्ति की अवस्था में स्थित होने वाले वो भी कभी कभी साधन भक्ति के स्तर पर आके कोई कार्य करते हैं इसलिए ये उदाहरण का प्रयोग किया गया है यहां पर और ये प्रथम तरह का जो सक्षम है इसका उदाहरण है ये विश्वास वास्तव में विश्वास का भी जो पहला वर्ग है श्रद्धा ये इसका उदाहरण है विश्वास के दो भाग हैं एक है श्रद्धा और दूसरा विश्वास तो श्रद्धा वो विश्वास है जो इतना दृढ़ नहीं होता है होता है अवश्य परंतु विश्वास बहुत ही उन्नत अवस्था में होता है जब वही श्रद्धा बहुत परिपक्व हो जाता है तो उसे विश्वास कहते हैं। ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं। तो ये उदाहरण जो महाभारत का है ये विश्वास के पहले वर्ग श्रद्धा का उदाहरण है। हालांकि इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि द्रौपदी कोई साधक हैं, वो साधक नहीं है। ठीक है, और आगे चल के एकादश स्कंद का उदाहरण है जो विश्वास के दूसरे वर्ग का उदाहरण है। विश्वास पढ़िएगा।
ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में पाया जाता है जिसमें हबी
ऋषभ महाराज
के पुत्र महाराज निमि को संबोधित करते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ नहीं है, वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है।
तो यह भक्त कह रहे हैं, वैसे हवि जो नव योगेंद्रों में से एक है वो कह रहे हैं कि जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी हटता नहीं है। रूप गोस्वामी लव निमिष अर्धम का प्रयोग करते हैं शब्द का, एक क्षण के लिए भी नहीं हटता, क्षण की बात तो दूर है, आधे क्षण के लिए भी नहीं हटता, ये कहने का तात्पर्य है। और अगर कोई उसे यह भी कहे कि एक क्षण के लिए तो कम से कम तुम भगवान की सेवा छोड़ो, मैं तुम्हें इंद्रदेव का पद दिला दूंगा, फिर भी इसके बारे में वो सोचता भी नहीं है, उसको ठीक त्याग देता है। तो जिसका मन ऐसे प्रलोभन से भी तनिक भी आधे क्षण के लिए भी विचलित नहीं होता है वो व्यक्ति विश्वास के स्तर में स्थित है। तो वास्तव में दोनों विश्वास के दोनों जो उदाहरण हैं, श्रद्धा और विश्वास, द्रौपदी और यहां हवि जो कह रहे हैं, दोनों ये जो वचन हैं ये सिद्ध भक्तों के वचन हैं, साधकों के नहीं हैं। और जैसा हम पहले कह रहे थे, ऐसे जो सिद्ध भक्त होते हैं वो कभी कभी सख्य और आत्मनिवेदनम जैसे भक्ति के अंग के कार्य भी करते हैं। ये कार्य सख्य आत्मनिवेदन आदि केवल साधन भक्ति में नहीं है, और साधन भक्ति के ही सबसे जो ऊंचे भक्त होते हैं वही मात्र इन दो अंगों को कर सकते हैं, सख्यम और इसके बाद में जो आने वाला है आत्मनिवेदनम। विरला ही ऐसे साधक पाए जाते हैं जो इन दोनों को कर सकें, और इसके बारे में जब हम आत्मनिवेदन या आगे चर्चा करेंगे तब यह स्पष्ट होगा और भी। लेकिन जो वृंदावन के ग्वाल बालों ने सख्य भाव कृष्ण के प्रति दिखाया वो यहां नहीं है, वो तो प्रेमा भक्ति के स्तर का भाव है, सख्य भाव। तो श्रद्धा शुरुआत का स्तर है और विश्वास परिपक्व अवस्था है। और आगे फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी मैत्री का, और ये मैत्री का उदाहरण है वास्तव में अगस्त्य संहिता से, परंतु प्रभुपाद जी ने यहां कहा नहीं है अगस्त्य संहिता का है, लेकिन आप लिख सकते हैं ये अगस्त्य संहिता का है, तो पढ़िएगा वो क्या कह रहे हैं। कभी कभी
कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को
रागानुगा
के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सत्य भक्ति के अंतर्गत आता है।
तो ये मैत्री का उदाहरण है जिसमें भक्त रागानुगा अवस्था में आता है। रागानुगा साधन भक्ति का दूसरा स्तर है ना। पहला स्तर कौन सा है? साधन भक्ति का पहला वर्ग वैधि भक्ति और दूसरा वर्ग रागानुगा भक्ति। तो ये रागानुगा भक्ति का उदाहरण है कि भक्त इस प्रकार से स्वाभाविक ही भगवान के प्रति ऐसा व्यवहार करता है। वैसे नियम के अनुसार किसी को मंदिर के अंदर लेटना नहीं चाहिए, परंतु एक प्रकार की मैत्री की भावना की वजह से ऐसा भक्त जाके कभी कभी लेट भी जाता है। तो समझना चाहिए कि ये रागानुग भक्ति में ये सख्य भाव का प्रदर्शन है। नहीं, दंडवत तो अलग है। दंडवत करने से आदमी लेटता नहीं है, वो दंडवत लगाना होता, उद्देश्य अलग होता है। हाँ, दंडवत करते करते कोई सो जाए, और कभी कभी ऐसे भी देख जाते हैं। एक बार हमने देखा कि आदमी दंडवत कर रहा था, वो उठ ही नहीं रहा था। मुझे बात क्या है, पता चला कि वहीं सो गया है। वो बहुत थका हुआ आया होगा, दंडवत कर रहा था, मन कहीं उधर उधर गया होगा, बस वहीं पर लेटा रहा। फिर एक मिनट के बाद किसी ने, एक दो मिनट के बाद किसी ने जाके बोल भाई, फिर उठा वहां से जल्दी जल्दी।
हमने भी एक बार देखा था कि मंगल आरती के बाद करण ध्वनि होती है, सो गया तो पूरा तुलसी आरती के बाद।
लेकिन ये रागानुगा भक्ति नहीं कहलाता है, है ना। तो ऐसे मंदिर में लेटना, इसको रागानुगा भक्ति नहीं कहते हैं, इसको नियम का उल्लंघन कहते हैं, क्योंकि अभी तक वो उस अवस्था में पहुंचे नहीं है। अच्छा, अगला, भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, आत्मनिवेदनम रूप गोस्वामी कहते हैं इसको। तो पढ़िएगा आत्मनिवेदनम के बारे में श्रीमद् भागवत का क्या उदाहरण है।
श्रीमद् भागवत में एक सुंदर वर्णन मिलता है जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसमें जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही शासकीय ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है।
ठीक है, तो यहाँ इसमें आत्मनिवेदन का उदाहरण दिया गया है कि पूरी तरह से वो समर्पित हो जाता है और सारे कार्यों को भी भगवान के चरण कमलों में समर्पित करता है। और भगवान क्या वचन दे रहे हैं कि इस जन्म में, आने वाले जन्म में भी, भविष्य में भी वो पूरी तरह से ऐसे भक्त की रक्षा करेंगे और वो साष्टी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, भगवान के ऐश्वर्य के धाम के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता में क्या बताया गया है पढ़िएगा।
भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी आश्वासन प्रदान करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके।
कौन सा श्लोक है? बहुत सरल है श्लोक। मेरे भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शरण में आएगा उसको सारे पापों से मुक्त करूंगा। कौन सा श्लोक है? सरल बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अच्छा, आगे अभी आत्मनिवेदन। ये आत्मा, आत्मा शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। तो कोई कहते हैं कि आत्मा का मतलब है जो आध्यात्मिक व्यक्ति है जो इस देह के भीतर है, जो इस देह को चला रहा है, आत्मा। साधारण तौर से हम जो आत्मा कहते हैं वो। कभी कभी आत्मा का मतलब शरीर होता है, भौतिक शरीर। कभी कभी आत्मा का मतलब मन भी होता है। तो आत्मनिवेदन का मतलब है जब हम आत्मा से, आत्मा का संबोधन करते हैं तो फिर ये आत्मा हम समर्पित करते हैं। अगर आत्मा से शरीर शब्द है, अर्थ है, तो इसका मतलब है कि शरीर को हम समर्पित कर रहे हैं, या तो फिर हम मन को समर्पित कर रहे हैं भगवान के चरण कमलों में। तो पढ़िएगा। नहीं, आत्मा शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। साधारण तौर से आत्मा का अर्थ होता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से हम आत्मा कहते हैं वो आत्मा है, लेकिन आत्मा शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। कई बार आत्मा का अर्थ शरीर भी हो सकता है, कभी कभी आत्मा का अर्थ मन भी हो सकता है। जिस प्रकार से उस शब्द का प्रयोग किया गया है उससे हम जान सकते हैं कि किस तरह से ये क्या मतलब है इसका। अभी आएंगे उदाहरण, आप समझिए। कई बार एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, संस्कृत में विशेष करके कई अर्थ हो सकते हैं एक शब्द के। ऐसे कितने सारे शब्द हैं, कई अर्थ हो सकते हैं। और इसके बारे में, आत्मा शब्द के बारे में विश्लेषण भी चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक के व्याख्या के दौरान भी किया था बड़े सुंदर ढंग से। तो पढ़िएगा।
हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घनबान, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व।
नहीं नहीं, पहले से ये समर्पण, ये आत्मसमर्पण,
यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्मा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। मतलब पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना।
इसको क्या कहते हैं? पूर्ण आत्मनिवेदन। तो पूर्ण आत्मनिवेदन का क्या उदाहरण है?
इस प्रसंग में भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है। उन्होंने आत्मनिवेदन करते हुए कहा है, हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इनके साथ जैसा चाहे करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी है, अतएव आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है।
कौन सा भजन है ये? मानस देह देह गेह जो किछु मोर अर्पिलुं तुआपदे नंद किशोर। मानस देह गेह, मन देह और गेह मतलब घर, मेरा घर परिवार सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। यह पूर्ण आत्मसमर्पण का उदाहरण। अच्छा, आगे अभी आत्मा, आत्म का मतलब जब आत्मा है तो इसका उदाहरण यहां दे रहे हैं यमुनाचार्य के प्रार्थनाओं के द्वारा, और आगे चल के हरि भक्ति विवेक नाम के ग्रंथ से रूप गोस्वामी उदाहरण देंगे शरीर के समर्पण का। जब आत्म का मतलब शरीर माना जाता है तो पहले यमुनाचार्य इनकी प्रार्थना सुन लेते हैं।
श्री यमुनाचार्य ने भगवान की स्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए हैं। हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के तीन गुणों के आनुषांगिक फल है और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूँ।
तो मेरे अलग अलग शरीर बदल जाएं भले, परंतु मैं तो आत्मा हूं, चाहे मैं किसी भी शरीर में क्यों न हो, लेकिन मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मैं मतलब आत्मा। तो ये है आत्मा का समर्पण, आत्मनिवेदन, और आगे शरीर का समर्पण। हरि भक्ति विवेक में क्या कहा गया है इसके बारे में?
हरि भक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक कथन आया है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु आप अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार चूंकि मैंने आपका शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अतएव अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं है।
बाजार में कई लोग अपने अपने पशुओं को बेचने आते हैं। एक बार व्यक्ति ने उस पशु को बेच दिया, फिर क्या होता है? वो चिंता करता है उस पशु के बारे में? एक बार उसने बेच लिया तो बेच लिया, फिर सामने वाला दूसरा जो आदमी है वो जाके फिर उस पशु का देखभाल करेगा। तो उसी प्रकार से यहां पर भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बिका हुआ पशु अपने भरण पोषण की चिंता नहीं करता, क्योंकि मालिक है, मालिक देखभाल करेगा, उसी प्रकार से मैं मेरे भरण पोषण के बारे में कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं बिक गया हूं। किसके हवाले आ गया हूं? आपके हवाले। मैंने अपने आप को बेच डाला है आपके चरण कमलों में, अब मेरे भरण पोषण के बारे में भला मैं क्यों चिंता करूं? मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे मेंटेनेंस के लिए भरण पोषण की कोई चिंता नहीं मुझे। दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? हमें किस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए? निजी परिवार के भरण पोषण या पालन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आगे पढ़िए।
यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहने की है।
तो ये है आत्मनिवेदनम। इस तरह से पूर्णतया समर्पित हो जाना, अपने शरीर आत्मा आदि को समर्पित कर देना, विशेष करके यहाँ जब शरीर की बात हो रही है, ताकि शरीर के भरण पोषण की चिंता नहीं करना। परंतु संसार में लोग बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, है ना, अपने शरीर के बारे में, शरीर के भरण पोषण के बारे में। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने कहा है कि सख्यम और आत्मनिवेदनम, ये दोनों चीजें ही बहुत ही दुर्लभ हैं। इसका उल्लेख हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, तो क्यों ये दुर्लभ है आइए सुनते हैं क्या कहते हैं रूप गोस्वामी, पढ़िएगा।
श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भाव एवं आत्मनिवेदन को दो कठिन विधियां हैं, अतः भगवान के साथ ऐसे संबंध पहले ही देखे जाते हैं। केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति में से मिश्रित संपर्क समर्पण निवेदन देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए।
तो यहां प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि सख्यम और आत्मनिवेदनम इन दो अंगों को केवल सिद्ध भक्त ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। हालांकि ये नियम साधन भक्ति के लिए बताए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेमी भक्त ये चीजें नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए श्रवणम कीर्तनम है, ये साधन भक्ति के अंग माने गए हैं, तो क्या इसका मतलब है कि प्रेमी भक्त श्रवण कीर्तन नहीं करते? वो भी तो करते हैं, लेकिन बहुत ही शुद्धता से करते हैं, तीव्रता से करते हैं, प्रेम भाव से करते हैं। भले वैधिक भक्ति के स्तर में रहने वाला भक्त इतने प्रेममयी भाव से न करे इन चीजों को, परंतु प्रेमी भक्त बड़े भाव से, भक्ति भाव से ये सारे कार्य करते हैं। तो सख्यम आत्मनिवेदनम दुर्लभ है इसलिए क्योंकि उनको करना, इनको संपन्न करना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि इससे अलावा सख्यम ये विरला, ये दुर्लभ इसलिए है कि ये बहुत ही ऊंचे भाव की अवस्था में संपन्न किया जाता है। और सख्य जो है अपने शुद्ध अवस्था में बहुत ही भावपूर्ण होता है, जैसे हम कह रहे थे वृंदावन के ग्वाल वालों का उदाहरण दे रहे थे। तो शुद्ध भाव में प्रेमा भक्ति के स्तर में इसको नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से, साधन भक्त लोग नहीं कर सकते इसको। और आत्मनिवेदन जो है भाव भक्ति के स्तर पे न स्थित होकर भी इनको किया जा सकता है, लेकिन जब ऐसे आत्मनिवेदन में कोई दिव्य भावों का मिश्रण हो जाता है तब फिर यह किया जा सकता है। जैसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि आत्मनिवेदन शुद्ध अवस्था में, इसके उदाहरण हैं बलि महाराज, जब आत्मनिवेदन में दास्य भाव भी आ जाता है तो ये उदाहरण इसके लिए है अम्बरीश महाराज, जब आत्मनिवेदन में कांता भाव आ जाता है तो इसकी उदाहरण है रुक्मिणी देवी, तो जब ऐसे आत्मनिवेदन में ऐसे ऊंचे भाव प्रकट होते हैं तो फिर वो भी दूसरा कारण है कि ये आत्मनिवेदन दुर्लभ हो जाता है। तो संक्षेप में कहें कि सख्यम और आत्मनिवेदनम जिनकी चर्चा हम अब कर चुके हैं दोनों ही दुर्लभ हैं, इसलिए कि उनको संपन्न करना कठिन होता है, पहला कारण। दूसरी बात, सख्यम को करना इसलिए, दूसरा कारण कि सख्यम करना मुश्किल है क्योंकि वो ऊंचे भाव से प्रकट होता है, जबकि आत्मनिवेदन के लिए ऐसे ऊंचे भाव में स्थित होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब आत्मनिवेदन इसमें भी ऐसे दिव्य भाव जैसे दास्य सख्य आदि का मिश्रण होता है तब वो आत्मनिवेदनम भी बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। नहीं केवल इसलिए कि उसे करना, संपन्न करना मुश्किल है, साथ साथ उस भाव को भी प्राप्त करना मुश्किल है, इसलिए दूसरा कारण हो जाता है कि ये भी दुर्लभ हो जाता है। तो ये जो सख्यम और आत्मनिवेदनम साधारण तौर से केवल सिद्ध भक्त कर सकते हैं अच्छी तरह से, साधकों को इन चीजों को करना इतना आसान नहीं है। हाँ, इसलिए हमारे लिए उदाहरण है कि उनके चरण चिन्हों में हम चल सकते हैं, इस समय भी भगवान है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय थे, अभी भी तो है। रूप गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने ऐसे ही उदाहरण दिए हुए हैं जो साधारण भागवत के उदाहरण है। ये भागवत पढ़ के हम क्या जान सकते हैं कि महान भक्तों ने भक्ति कैसे की थी, ताकि उनके पद चिन्हों में हम चल सकें, है ना। इसलिए इन उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है श्रीमद् भागवत में, ताकि हम सीखें। और ये सारे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हैं, ऐसे भी और कई होंगे, लेकिन क्योंकि ये हैं इतने प्रसिद्ध, इसलिए उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है। एक है एक शुद्ध आत्मनिवेदन, वो है बलि महाराज, और दूसरा है जब आत्मनिवेदनम में दास्य भाव आ जाता है कम साथ में, तो ये उदाहरण है अम्बरीश महाराज का। परीक्षा के लिए आपको इतने सारे डिटेल्स नहीं आएंगे, केवल जानकारी के लिए, क्योंकि कब अगली बार तो आप भक्ति रसामृत सिंधु ऐसे क्लास में बैठ के पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आगे चल के अपने अपने आप ही आप पढ़ेंगे इस ग्रंथ को। तो जब आप आगे चल के पढ़ेंगे तब आपके नोट्स आप देखेंगे कि हाँ ये वहां कहा गया था, तो फिर आप आगे उस समय इसको लाभदायक होगा आपके लिए। तो केवल परीक्षा की दृष्टि से इसको मत देखिए, परीक्षा के लिए भी जो उचित है वो भी आप पढ़िए अवश्य, वो तो हम बोल ही रहे हैं। साथ साथ में ये चीजें आपके गहराई में जब आप पढ़ाई करेंगे आगे चल के, ये चीजें बहुत काम में आएगी आपको, आपको इसमें और अच्छी तरह से इसका स्वाद मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी 50वां नियम, 50वां अंग भक्ति का क्या है? प्रिय वस्तु अर्पित करना। तो इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं निज प्रियो, हाँ पढ़िएगा श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है उदाहरण इसके लिए। कृष्ण उद्धव को कहते हैं, क्या कहते हैं?
श्रीमद् भागवत में उद्धव श्री कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा।
बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो है, या जो वस्तु जो आपको सबसे प्रिय है, अगर उस चीज का दान आप कृष्ण के लिए करोगे या कृष्ण को अर्पण करोगे भले, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और शाश्वत लाभ उस भक्त को प्राप्त होगा। ऐसी चीज को अर्पण करना जो हमें प्रिय नहीं है या जो खराब हो गया है, इसमें कोई या आपसे पहले से छीन लिया गया है, ये सब करना भगवान को प्रसन्न नहीं करता। कई बार ऐसे देखा जाता है, विशेष करके हमारे गौशाला में हमारे पास कई लोग आते हैं कि हम भगवान कृष्ण को गाय दान करना चाहते हैं, तो फिर देखा जाता है कि उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है गाय संभालने के लिए, तो इसलिए वो हमें दे जाना चाहते हैं। हालांकि उनका भाव ये नहीं है कि वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बेचारे सोच रहे हैं कि कोई अच्छे जगह में हम दें, ऐसा नहीं कि हम बेच डालें, कम से कम इतनी भावना तो है। कई बार ऐसे भी देखा जाता है, कोई गाय दान करने आता है तो कोई ऐसे गाय को दान करता है जो स्वस्थ नहीं है या ठीक ठाक नहीं है। अगर अपनी गौशाला में कई गायें हैं और कोई भक्त को कहते मेरे गाय में ये गाय आपको दान दूंगा, तो अच्छे से अच्छी गाय लेकर दान करना चाहिए कृष्ण के लिए। ऐसे नहीं कि अच्छे गाय मेरी सेवा के लिए रखूं और कृष्ण के मंदिर के लिए जो बीमार गायें हैं, बूढ़ी गायें हैं, दूध नहीं देने वाली हैं, उनको हम दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा एक बार एक ब्राह्मण था, उसके हाथ में मूड़ी थी। मूड़ी तो आप जानते हैं ना, मूड़ी मूड़ी समझते हैं ना। तो थैली में लेकर मूड़ी खा रहा था और अचानक क्या हुआ, बहुत हवा का झोंका आ गया और हवा के झोंके में क्या हुआ, सारे मूड़ी का पैकेट उड़ के चला गया। तो क्योंकि मूड़ी तो बहुत हल्का होता है ना, तो उड़ के चला गया। तो ब्राह्मण की बुद्धि तेज थी, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, भगवान को हमने भोग चढ़ा दिया। तो इस प्रकार का हमें सेवन नहीं करना है भगवान कृष्ण के सामने। जब कोई वस्तु जा रही है हमसे, हमारे पास से, या कोई व्यक्ति छीन रहा है, वैसे भी जाने वाला है, तब हम कहें चलो कृष्ण अर्पणमस्तु, हम कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु जो सबसे प्रिय वस्तु है और जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, ऐसे चीजों को हमें अर्पण करना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारे पास मूल्यवान क्या है, हमारा शरीर है ना, सही है, शरीर मूल्यवान है ना। तो शरीर को समर्पित कब करना चाहिए भगवान के चरणों में, जब अच्छा स्वास्थ्य हो। कोई व्यक्ति सोचे अपने बचपन में, जवानी में मैं खूब भोग करूंगा, खूब ऐश करूंगा, जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जब और कुछ नहीं कर पाऊंगा, भोग करने की शक्ति रहेगी नहीं शरीर में, तब मैं भगवान के पास जाऊंगा और कहूंगा तव अस्मि, मैं आपका हो गया, है ना। तो भगवान क्या कहेंगे, अभी आके क्या लाभ, जब आ सकते थे तो नहीं आए, तब भोग करना चाहा तुमने। हाँ, लेकिन क्योंकि भगवान तो बहुत कृपालु है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी वो अवश्य स्वीकार करते हैं। फिर भी ये भाव ठीक नहीं है कि जब शरीर ठीक है तो हमारे लिए हम कुछ कार्य करें और शरीर बेकार हो जाता है तो भगवान को समर्पित करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला नियम, कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। रूप गोस्वामी इसके लिए कहते हैं तद अर्थे, तद मतलब उनके लिए, कृष्ण के लिए, अर्थे मतलब उनके लिए, तद मतलब उनका, वो, और अर्थे मतलब उनके लिए। तद अर्थे अखिल चेष्टितम, अखिल मतलब समस्त, चेष्टितम चेष्टाएं, तो सारी चेष्टाएं केवल श्री कृष्ण के लिए करनी चाहिए और कोई उद्देश्य हमारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक श्लोक है लौकिकी वैदिकी, वो लगाइएगा जरा। नहीं, ये नहीं, इसके बाद, हाँ ये वाला, नहीं ऐसे लगाइए उसको ऊपर, ऐसे लगा ले। लौकिकी वैदिकी वापी,
लौकिकी वैदिकी वापी,
या क्रिया क्रियते मुने,
या क्रिया क्रियते
सेवानुकूल साकार्य दीर्घ होना चाहिए कूल अनुकूल सेवा अनुकूल कूल साकार्य सेवानुकूल साकार्य भक्ति इच्छता देखिए जरा सही है हरि भक्ति
सेवा अनुकूल
हरि सेवानुकूल हरि सेवानुकूल साकार्य भक्ति इच्छता फिर से पढ़ेंगे लौकिकी वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने नहीं हरि सेवानुकूल साकार्य भक्ति इच्छति इच्छता प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं नारद पंचरात्र का श्लोक है ये
नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए शास्त्र द्वारा बताए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत दूसरे शब्दों में भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे अपितु कृष्ण भावना में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे उदाहरणार्थ यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है
अच्छा अभी ये आपने प्रभुपाद जी की व्याख्या भी सुन ली अब इस श्लोक का अर्थ बताइए लौकिकी वैदिकी व वा अपि या कोई लौकिक कार्य हो या वैदिक कार्य हो लौकिक मतलब इस संसार का कार्य जो हमारे भरण पोषण के लिए हम कर रहे हैं जो संसार में रहते हुए हमें करना पड़ जाता है हम व्यवसाय करते हैं नौकरी करते हैं घर को संभालते हैं बहुत सारी चीजें करते हैं तो यह लौकिकी लौकिक कार्य और वैदिक जो शास्त्रों में बताए हुए हैं वेदों में बताए हुए हैं वो कार्य तो लौकिकी वैदिकी वा अपि या क्रिया क्रियते मुने ये दोनों क्रियाएं जो है करने चाहिए कैसे करने चाहिए हरि सेवा अनुकूल एव भगवान को भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल सेवा हेतु करने चाहिए सा कार्य ऐसे कार्यों को भक्तिम इच्छता जो हरि भक्ति चाहता है भक्तिम इच्छता जो इच्छा रखता है कि मुझे कृष्ण भक्त बनना है तो उसे लौकिक और वैदिक ऐसे दोनों ही कार्य करने चाहिए और उस प्रकार के कार्य करने चाहिए लौकिक और वैदिक कार्यों में जो कि हरि सेवा के लिए अनुकूल है ठीक है कोई समझाएंगे आप इस श्लोक को शब्द भेद करके बताइए पीछे से नीचे से शुरू कीजिए
भक्ति में इच्छता मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करना चाहता है इच्छता उसे हरि सेवा अनुकूल सकार्य उसे ऐसे ही कार्य करने चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अनुकूल हो और ऊपर है कि लौकिक उसे कोई लौकिक या वैदिक
दोनों प्रकार के कार्य
दोनों प्रकार के कार्य
करने चाहिए क्रियते करने चाहिए तो केवल तो लौकिक और वैदिक कार्य दोनों इस प्रकार के करने चाहिए जो हरि सेवा के लिए अनुकूल हो जो वेदों में भी इतने सारे नियम बताए गए हैं तो हम केवल उन नियमों का पालन करेंगे जो हमारे भक्ति के लिए लाभदायक होगा ऐसे कई हैं जो कर्मकांड हैं ज्ञान कांड हैं हम वो सब नहीं करेंगे तो वैदिक क्रियाओं को भी हम चुन के करेंगे केवल उन कार्यों को हम चुनेंगे जिनको करने से हमारे भक्ति में लाभ होगा जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे जो उनके सेवा के लिए अनुकूल होगा साथ साथ हमारे जो लौकिक क्रियाएं हैं संसार के भीतर रहते हुए जिन कार्यों को करने के लिए अनिवार्य हो जाते हम बाध्य हो जाते हैं ऐसे कार्यों को भी हम ऐसे चुनेंगे जिनसे कि हमारे भक्ति में लाभ हो अनुकूल हो ऐसे भक्तों को चाहिए कि वो ऐसे कोई व्यवसाय न करे जो हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध में हो एक भक्त थे जो हम उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं उनका बहुत बड़ा व्यवसाय था और व्यवसाय में वैसे वो जो मुर्गियों के लिए वगैरह जो आहार होता है वो बनाते थे मुर्गियों के बच्चे जो होते हैं चिकन मुर्गी वगैरह उसके लिए उनके आहार के लिए उनके फैक्ट्री में सब बनता था और फिर ये आगे चल के इनको खिलाया जाता है मुर्गियों को क्या करने के लिए मोटा करने के लिए उसके बाद काटा जाता है तो जब वे भक्ति में आए उनका व्यवसाय बहुत ही बढ़िया चल रहा था भौतिक दृष्टि से व्यवसाय की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया चल रहा था खूब कमा रहे थे और उनका मेन व्यवसाय इसमें था और छोटे मोटे कुछ और था लेकिन जब वो भक्तों के संपर्क में आए उन्होंने समझ लिया कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है क्योंकि आगे चल के वो क्या हो रहा है उसको तो तुरंत उन्होंने सारा व्यवसाय बंद कर दिया लाखों लाखों रुपए उनको नुकसान हुए परंतु दूसरा जो बिजनेस उन्होंने चुना वो इतना अच्छा चल गया कि जो नुकसान हुआ था उसको पार करके उनको बहुत फायदा होने लगा कोई दाल या कुछ ऐसे कुछ पता नहीं दाल चावल का कुछ उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया जिससे उनको खूब फायदा हो गया तो देखिए भगवान के लिए जब कोई व्यक्ति किसी चीज को त्यागता है ना कभी नुकसान नहीं होता जब उसको उसको ज्ञान हो गया कि हरि सेवा अनुकूल नहीं है ये हरि सेवा प्रतिकूल है ऐसे करने से बहुत भारी कर्म प्राप्त होते हैं या पाप होता है इसका मतलब है कि हम पशु हत्या को प्रोत्साहन दे रहे हैं ना हमारे कार्यों से तो उसने त्याग दिया तो इस प्रकार से हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि चाहे हमारा व्यवसाय हो ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसे नौकरी ढूंढना है कोई कंपनी में वो सेल्समैन है पहले कहीं कुछ कंप्यूटर बेचता था कभी कुछ क्या बेच रहा है अभी जाके शराब की कंपनी में नौकरी ले तो उसके लिए ठीक होगा उसके जाके क्या करना होगा जगह जगह जाके उसे शराब बेचना होगा तो ये तो उसकी हरि सेवा के लिए अनुकूल नहीं है तो ऐसे चाहे वो लौकिक कार्य हो या वैदिक कार्य हो हमारे लिए निर्णय लेने का आधार क्या है हरि सेवा अनुकूल एव ठीक है क्योंकि हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति तो सारी चेष्टाएं हमारे कैसे होनी चाहिए केवल कृष्ण के लिए होनी चाहिए और जो व्यक्ति अपने अपने व्यवसाय को नौकरी को आदि सब कर रहे हैं अपने घर को भी संभाल रहे हैं इन सारे कार्यों के फलों को कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करना चाहिए फिर आगे है शरणागत होना या इसको शरणापत्ति कहते हैं रूप गोस्वामी कहते हैं शरणापत्ति ही, या भगवान के संरक्षण को स्वीकार करना। अच्छा, वो दो श्लोक जरा आप चार्ट घुमाएंगे, चार्ट शरणापत्ति ही। कौन सा दिखा नहीं? हाँ मतलब जो शास्त्रों में कार्य बताए गए हैं करने के लिए वो भी करने चाहिए, और हमारे भरण पोषण के लिए या दुनिया में अन्य जो भी कार्य करने होते हैं उनको भी करना चाहिए, लेकिन दोनों ऐसे होने चाहिए जो हरि भक्ति के लिए अनुकूल हो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वेदों में भी ऐसे कोई कार्यों के बारे में कुछ कहा गया हो जो भक्ति को हमें प्रोत्साहन नहीं देते तो हमें नहीं करने चाहिए। आइए, हरि भक्ति विलास में शरणापत्ति ही के बारे में क्या बताया गया है, पढ़िएगा।
हरि भक्ति विलास में आत्मसमर्पण विषय यह कथन प्राप्त होता है, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपके शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है, और जो मन वचन तदस्थिति से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है।
तवास्मिति वदं वाचा तथैव मनसा विदन् तत्स्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। अभी बताइए, थोड़ा अंदाज भी आपको मिल जाए इतना काफी है। तव अस्मि मतलब तवास्मि, मैं आपका हूं। तव अस्मि इति वदम वाचा, ऐसे शब्द जो कहता है, कैसे शब्द, मैं आपका हूं। तथा एव मनसा विदन, अपने मन से शरीर से भी कहता है और वास्तव में ऐसे कार्य करता है। ऐसा नहीं कि केवल मुंह से कह देता है, कार्य कुछ और ही है, ऐसे नहीं। ऐसे कहता है भगवान से कि मैं आपका हूं, और कार्य भी ऐसे करता है, सोचता भी ऐसे है, तो क्या होता है,
वो आपके आश्रय को प्राप्त करता है।
और
वो जो
शरणागत हो जाता है, तत्स्थानम तद आपके चरणों में जो आश्रय ग्रहण करता है उसको क्या हो जाता है,
शरणागत हो
जाता। नहीं, एक शब्द कौन सा महत्वपूर्ण, एक शब्द है मोदते, मोद आनंद, मुदित या मोद का क्या मतलब है, आनंद। तो जो व्यक्ति ऐसे तव अस्मि कह के भगवान के शरण में आ जाता है, शरणागत हो जाता है, और न केवल अपने शब्दों से लेकिन अपने मन से भी और शरीर से भी ऐसे ही कार्य करता है, तो भगवान क्या कहते हैं ऐसे कि वास्तव में देवी आनंद का स्वाद ले पाएगा, वो देवी आनंद में स्थित होगा। तो किसी को अगर वास्तव में सुखी होना है तो उसको क्या करना चाहिए, भगवान के शरणागत होना चाहिए, शरणापत्ति ही। है ना सुंदर श्लोक। तो भगवान का शरण लेने का लाभ के लाभ अनेक हैं, उनमें से एक है मोदते कि व्यक्ति को दिव्य आनंद प्राप्त होगा। हरिभक्ति विलास का श्लोक है ये। अच्छा अगला श्लोक चलो घुमाइएगा, सबने लिख लिया? एक मिनट फिर सबको लिखने दीजिए। एक बार अभ्यास हो जाएगा आपको, शब्दों का मतलब अलग अलग आप जान जाओगे। अभ्यास होने का अंदाज कहा जाता है, भले आपको व्याकरण की दृष्टि से सही ठीक ठाक नहीं पता चल रहा है क्या होना चाहिए।
जैसे तन्वा जो है वो
तन्वा तन तन
तन्वा जो है वो ऊपर वाली लाइन में बोलो,
आप उसको छंद के हिसाब से आप जान पाएंगे। जब एक छंद में आप बोलेंगे ना तो उसमें एक समानता होनी चाहिए साहब, तो आप जान जाएंगे। तन्वा तन्वा तब अस्मि
कैसे
मतलब क्योंकि अ और अ मिलाकर आ हो जाता है, तव और अस्मि।
अच्छा एक चौक लीजिए हमको,
देखिए संधि शेर कैसे करें।
वास्तव में संस्कृत है ना, ये अक्षर है वास्तव, लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे होता है। तो क्या होता है तो वास्तव में हम ये अक्षर ये है, तो अभी हम कहते हैं तब और अस्मि, इसका भेद करिए अभी तो क्या होता है आ हो जाता है, तो तवास्मि हो जाता है। दोनों को मिलाकर ठीक है ना, कभी कभी अगर यहां आ हो और ये क्लोर है फिर भी आ ही हो जाता है संधि। तो केवल आपको ये जानना है कि अ और अ मिलाकर आ हुआ है या अ या आ मिलाकर आ हुआ है, वो आपको देख कर ही पता चलेगा अभ्यास करके आपको ठीक है। तो इसलिए तब अस्मि से हो गया तवास्मि। अच्छा आगे जरा घुमाइए, ये नरसिंह पुराण का है, पढ़िएगा। नरसिंह पुराण में दूसरा उदाहरण है शरणापत्ति का।
नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है, मैं मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ।
तो आप लिख लीजिए श्लोक को अगर आप चाहते हैं तो, फिर उच्चारण करेंगे। कभी कभी संस्कृत में शब्दों का क्रम थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है ऐसे लगता है, परंतु फिर अभ्यास करने से पता चल जाता है। जैसे भगवान कहते हैं ना, भक्तों सिमे सखा चेती, रहस्यम हेतद उत्तमम, ये जानते हैं आप श्लोक है ना। तो भक्तः अस्मि सखा च इति, तो सखा के बाद और आता है, च मतलब और, हम जब कहते हैं कि मेरे पास करताल और मृदंग है तो और ये करताल और मृदंग के बीच में आता है ना, मेरे पास करताल और मृदंग है, लेकिन संस्कृत में कहें क्या, करताल मृदंग और, करताल मृदंग और, तो और वास्तव में हिंदी में या अंग्रेजी में हमें अनुभव है बीच में डालने के, इसे सखा भक्त सखा च, च मतलब और, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, उसके लिए भक्त सखा च हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहां भी कभी हमारे साधारण सोचने की और बोलने की जो पद्धति है उससे हमें थोड़ा सा भी आदत अलग बनानी चाहिए। त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणम् देव देव जनार्दन इति यः शरणं प्राप्तः क्लेशात् क्लेशात् उद्धारयाम्यहम्। अभी शब्द भेद करिएगा फिर से बोलिए। त्वाम् आप प्रपन्नः, प्रपन्नः मतलब शरणागत, और अस्मि मैं हूं, शरणम आगे देव देव जनार्दन, देवताओं के देव, देव देव कृष्ण का एक नाम है देव देव जनार्दन। जनार्दन शब्द का अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण का नाम है ना, क्या मतलब, जो सभी का भरण पोषण करते हैं, सभी का पालन करते हैं, जन अर्दन या जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यह जो समस्त जो दुष्ट चीजें हैं उसको नष्ट करते हैं, अशुभ चीजों को नष्ट करते हैं, यह है जनार्दन। तो देव देव जनार्दन इति यह शरणम प्राप्तस क्लेशाद, फिर उद्धारयाम यहम, तो जो व्यक्ति, नरसिंहदेव कह रहे हैं ये श्लोक, नरसिंहदेव क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कह के मेरे पास आता है, क्या कह के आता है मेरे पास, शरणम प्रपन्नः अस्मि, प्रपन्नो अस्मि शरणम, शरणम प्रपन्नो अस्मि, मैं आपको मेरा संरक्षक मान रहा हूं। जो इस प्रकार से भगवान के पास आता है, भगवान ही खुद कह रहे हैं नरसिंहदेव के रूप में कि मैं आपको मेरा संरक्षक स्वीकार करता हूं। शरणम प्रपन्नो अस्मि देव देव जनार्दन, हे जनार्दन, हे नरसिंहदेव भगवान, मेरी रक्षा करने वाले आप हैं। और फिर भगवान क्या कहते हैं, शरणम प्राप्तः, मेरा आश्रय प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। अब भगवान कह रहे हैं क्लेशात् उद्धारयामि अहम्, ऐसे व्यक्ति को मैं क्या करता हूं, क्लेशों से उद्धार करा देता हूं, क्लेशात् उद्धारयाम्यहम्। ठीक है। तो इसलिए हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं शरणम प्राप्त का मतलब है भगवान को अपना आश्रय मान लेना। तो इसलिए शरणम के दो अर्थ होते हैं, एक है रक्षा, दूसरा है आश्रय। तो अब यह प्रश्न आता है कि शरणापत्ति में और आत्मनिवेदनम में क्या अंतर है।
आत्मनिवेदन में वो अपने आप को भगवान के सुपुर्द करता है और इधर वो आश्रय लेता है, भगवान से कहता है कि मैं आपकी आश्रय में हूँ और आपकी संरक्षण में हूँ।
ठीक है, और कोई बताए।
आत्मनिवेदन में वो पूरी तरह से कह देते भक्त, कहता है कि मैं अब आप मतलब जो चाहो मेरे साथ करो, चाहे मारो चाहे जो मर्जी करो। और शरण में आके कहते हैं कि अब मैं आपकी शरण में आ गया, आप बचाओ, मैं कुछ भी होता है।
आत्मनिवेदन में वो स्वेच्छा से शरण
हो सकता है कभी कभी, लेकिन जीव गोस्वामी क्या कहते हैं आप जानना चाहते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं शरणापत्ति ही मतलब जब भक्त भगवान को अपना रक्षक मानता है। भक्त भगवान को अपना संरक्षक मानता है और आत्मनिवेदन में भक्त अपने आप को भगवान की संपत्ति मानता है। चाहे वो भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होने का भाव हो या ना हो, जैसे बलि महाराज का उदाहरण है आत्मनिवेदन का, कि उन्होंने अपने आप को भगवान की संपत्ति ऐसे समझ लिया, समर्पित कर गए, हो गए भगवान के प्रति, लेकिन ऐसे निर्भर होने का भाव नहीं था। तो सारांश में कहा जाए तो शरणापत्ति में भक्त भगवान को अपना रक्षक मानता है और ये इस भाव का प्राधान्य होता है उसके मन में, और आत्मनिवेदनम में भक्त अपने आप को भगवान की संपत्ति मान लेता है, प्रॉपर्टी। समानता दोनों में है, शरणापत्ति ही और आत्मनिवेदन में, लेकिन सूक्ष्म ये अंतर भी है। ठीक है, तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना ये अगला नियम है। इसे रूप गोस्वामी कहते हैं तदीयानाम सेवनम। तदीयानाम सेवनम नहीं, तदीयानाम सेवनम मतलब जो भी भगवान से संबंधित हैं उन वस्तुओं की सेवा करना। वहां पे गाय, तुलसी, अश्वत्थ, आमल की वृक्ष, इन सबों की चर्चा हुई थी, है ना। और कई बार वैसे कई नियम दोहराए जाते हैं उनका महत्व बताने के लिए। तो स्कंद पुराण में क्या कहा गया है तुलसी सेवा के बारे में? तुलसी सेवा का महात्म्य का वर्णन स्कंद पुराण में पाया जाता है। आश्चर्यजनक है, देखिए कितना लाभ होता है तुलसी की सेवा करने से।
स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से मुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवान प्रेम का भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है।
ठीक है, कृपया कागज को घुमाइएगा। अभी इसी श्लोक को, स्कंद पुराण के श्लोक को हमने एक चार्ट के रूप में लिखा हुआ है। तो अभी अभी जो श्लोक पढ़ा गया उसी को केवल यहां पे दिखाया गया है। पढ़िएगा।
तुलसी सेवा में
कार्य और लाभ। पहला कार्य क्या है?
दर्शन करना।
हाँ, तो तुलसी महारानी का दर्शन करने से क्या लाभ प्राप्त होता हो सकता है?
पाप कर्म
नष्ट होते हैं केवल दर्शन करने मात्र से। तो कितने लोग हैं जो इधर उधर जाते हैं और अनायास उन्होंने दर्शन भी कर लिया तो क्या हो जाता है?
पाप कर्म नष्ट।
तो इसको क्या कहते हैं? अज्ञात सुकृति। सुकृति तो है लेकिन अज्ञात है, उनको पता भी नहीं कि तुलसी को देखने से ऐसा लाभ है। शायद उनको पता भी नहीं होगा कि ये तुलसी है। दूसरा, स्पर्श करने से क्या लाभ?
शरीर की पवित्रता।
शरीर पवित्र हो जाता है मतलब हमारे पूर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, नमस्कार करना तुलसी को, इससे क्या लाभ होता है?
क्लेशों तथा रोगों से मुक्ति।
क्लेशों तथा रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चौथा, जल अर्पण करना। तुलसी को जल अर्पण करेंगे, तीन बूंद पता है ना हम देते हैं हर रोज सुबह तुलसी पूजा के बाद, तो क्या लाभ होता है? यमराज के दरबार में नहीं जाना पड़ता, यमदूतों से वाद विवाद नहीं करना पड़ता, यमलोक में जाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात मृत्यु के परे हो जाता है व्यक्ति। फिर तुलसी वृक्ष को उगाना,
कृष्ण भक्त हो जाना,
वृक्षारोपण करते हैं या बीजारोपण करते हैं, तो क्या लाभ होता है इससे?
कृष्ण भक्त,
व्यक्ति कृष्ण भक्त हो जाता है, उसके मन में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जितना भाव अच्छा है उतना लाभ अधिक होगा, क्योंकि भक्ति ये कोई यांत्रिक चीज नहीं है, ये भाव के ऊपर निर्भर है। परंतु कार्यों का भी महत्व है, वो अपनी जगह में भी है महत्वपूर्ण। बिना भाव के कोई कार्य किया जाए तो लाभ होगा तो सही, लेकिन बहुत कम होगा। ठीक उसी प्रकार से जो लोग जैसे कोई बगीचे में काम कर रहे हैं, तुलसी का पौधा उन्होंने बो दिया, उगा दिया, लाभ तो होगा। अगर तुलसी की सेवा अच्छी तरह से की तो अवश्य लाभ होगा, वो भी अज्ञात सुकृति होगी, उनको पता नहीं है कि क्या लाभ मिल रहा है उनको,
उसे क्या मिलेगा?
यही होगा, धीरे धीरे से उनकी अज्ञात सुकृति बढ़ती जाएगी, एक दिन वो कृष्ण भक्त हो जाएंगे। छठा,
कृष्ण के चरणों में अर्पण करती।
तुलसी दलों को कृष्ण के चरणों में अर्पण करना, और ये सर्वश्रेष्ठ लाभ है। क्या लाभ?
कृष्ण
प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तो कितना महत्वपूर्ण है तुलसी सेवा करना। बिल्कुल भाव लेकिन भावहीन भी कोई व्यक्ति, वैसे तो को जो भी व्यक्ति मंदिर में आते हैं थोड़ा भाव तो होता ही है ना उनका, नहीं तो मंदिर में क्यों आते। वो भी सुबह को तुलसी पूजा के समय, मंगल आरती के समय क्यों आते, थोड़ा तो कुछ भाव है ही। और जब वो आके जल अर्पण करेंगे, भले उनको जानकारी हो या नहीं ज्यादा, उनको लाभ तो होगा और इस लक्ष्य की ओर, इस गति की ओर वो अवश्य उनकी यात्रा शुरू करेंगे। जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि यहां कलयुग की दशा बहुत ही बुरी है, लोग नास्तिक हैं और देवी देवताओं की उपासना करते हैं और धर्म के नाम पर केवल भोग करना चाहते हैं, तो बहुत ही दुखी हो गए थे वो और अन्य वैष्णव। वैष्णवों की संख्या तो उतनी अधिक नहीं थी उस समय, तो उन्होंने बहुत ही हृदय से, तीव्रता से भगवान का आह्वान किया, उनको पुकारा। और क्या किया अद्वैत आचार्य की उपासना क्या थी जब वो भगवान को पुकार रहे थे? शालिग्राम शिला को गंगा जल और तुलसी दल अर्पण कर रहे थे, और शालिग्राम शिला तो भगवान ही है, तो भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे कि आप स्वयं प्रकट होइए। और जब ऐसा वो अर्पण करते थे तो कौन से श्लोक का उच्चारण करते थे? पुराणों का कोई श्लोक है पता है किसी को? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, चुलुकेन मतलब इतना ही बस, यहां इतना मुट्ठी, इतना ही सही, थोड़े बूंद ही। जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणितम, विक्रीणितम स्वम आत्मानम, विक्रीणिते स्वम आत्मानम, विक्रीणिते स्वम आत्मानम भक्तेभ्यो वास्तव में भक्तेभ्यः है तो वो जब संधि हो जाती है भक्तेभ्यो हो जाता है, तो भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। यह है कोई पुराण, पद्म पुराण से होगा या दूसरे किसी पुराण से, वो चैतन्य चरितामृत में आता है श्लोक। अभी आप सब संस्कृत पंडित हो गए, अभी आप इस श्लोक का अर्थ बताइए। भेज देते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। विक्रीणते स्वम आत्मानम, अपने आप को बिक्री कर दे, विक्रीणतम बेच डालते हैं, किनके हवाले, किनको बेच डालते हैं अपने आप को? भक्तेभ्यः, भक्तेभ्यो भक्तों के हवाले कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? नहीं, क्यों ऐसे अपने आप को भक्तों के हवाले करते हैं वो? उनमें ऐसे कौन से गुण हैं जिसकी वजह से भक्त वत्सल हैं? भक्त वत्सल मतलब क्या है?
वत्सल को बच्चे जैसे गाय में जो बच्चे होते हैं बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, तो भगवान भक्त वत्सल है, तो गाय को बच्चा मतलब मछली को प्यार करते तो अनुभव तो चले और भगवान एक जैसे टाइम मछली को प्यार करते ऐसे अपने भक्तों को।
बहुत अच्छा। वत्सल, वत्सल मतलब वत्स से आता है, गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्तों को भी वत्स कहते हैं, या माता पिता या अपने जो बच्चे हैं उनको भी वत्स कहते हैं कभी कभी प्रेम से। तो जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को वत्स से प्रेम करती है और देखभाल करती है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी ही भावना रखते हैं। तो केवल तुलसी दल मात्रेण, एक तुलसी दल अर्पण किया और साथ गंगा जल या जमुना जल, तो भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं उस भक्त के प्रति कि अपने आप को बेच डालते हैं, ऐसे भक्तों के हवाले कर देते हैं अपने आप को, क्योंकि उनका गुण ही ऐसा है, वो है भक्त वत्सल। एक बार नारद मुनि जब द्वारका में गए थे ना, तो भगवान कृष्ण का वजन उन्होंने किया था तराजू के ऊपर, और इतना सोना वगैरह बहुत सारा कुछ सोना, फिर भी वजन ठीक हो ही नहीं। फिर एक तरकीब सोची उन्होंने, क्या किया,
तुलसी
दल डाल, फिर सब ठीक हो गया, तराजू समान हो गया। अच्छा, आगे प्रभुपाद जी इसके बारे में और क्या कहते हैं पढ़िए। भारत में
अपने सारे हिंदू नाटक में जो वैष्णव नहीं है वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है।
तो ये आपको केवल भारत में दिखाई पड़ेगा, अन्य देशों में ऐसे दिखाई नहीं पड़ता। पहली बात तो ये है कि कई देशों में इतनी ठंडी होती है या इतनी गर्मी होती है कि तुलसी को उगाना वहां संभव नहीं होता, परंतु उन देशों में भी जहां इस्कॉन के केंद्र हैं, वहां विशेष कोई न कोई व्यवस्था की जाती है तुलसी सेवा के लिए। जब हम रशिया में गए थे तो हमने देखा कि वहां विशेष हीटर वगैरह लगाकर और लाइट वगैरह लगाकर रखते हैं, एक जिसमें जैसे हम लोग अपने आप के लिए हीटर इस्तेमाल करते हैं वहां पर, तो तुलसी के लिए भी, उनको गर्म रखने के लिए। ज्यादा ठंडी में तो तुलसी उग नहीं सकती, तो ऐसे बढ़िया देखभाल करते हैं और सुंदर रूप से तुलसी जो है वो उगती है वहां भी, ऐसे देशों में भी, कैनेडा रशिया ऐसे ठंडे देशों में भी ऐसे होता है, तुलसी है। अभी आगे स्कंद पुराण पढ़ते हैं। तो आगे और भी एक उदाहरण दिया हुआ है स्कंद पुराण से, स्कंद पुराण में और व्याख्या क्या है पढ़िएगा।
स्कंद पुराण में तुलसी विषय एक अन्य पठन मिलता है, तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है। इसके दर्शन स्पर्श स्मरण वंदन प्रणाम श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से स्थायी कल्याण होता है। जो कोई उपर्युक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है।
तो जिनको वैकुंठ लोक में निवास करना है सदैव, उनको क्या करना चाहिए, तुलसी को का दर्शन करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए, तुलसी के प्रति नमस्कार करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और जब रोज की बात हो रही है कि उगाना, इसका मतलब ये नहीं कि रोज आपको बीज डालना चाहिए, इसका मतलब इस प्रकार से देखभाल करना चाहिए कि सही तरह से मंजरी और दल वगैरह वो ठीक से आते रहे रोज, तो सब कल्याणमय हो जाता है। और इस प्रकार से जो तुलसी महारानी के संपर्क में आते हैं वो वैकुंठ लोक में सदैव निवास करने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न आदि? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बचपन में ही आम को त्याग दिया था और सारे जीवन भर उन्होंने आम नहीं खाया। हालांकि जिस समय उन्होंने व्रत लिया था वो एक छोटे से बालक थे, शिशु थे, फिर भी इतना दृढ़ व्रत था उनका कि उन्होंने कभी जीवन में आम नहीं खाया। तो कई बार भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई चीजें त्यागी जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर किसी चीज को त्यागें तो भगवान को वो चीज नहीं खिलाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने खुद आम नहीं खाया, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि भगवान को भी नहीं खिलाना चाहिए। भगवान को तो खूब खिलाया होगा, उन्होंने अर्पण किया होगा आम, परंतु अपने लिए नहीं। भले हम उसे लें या न लें, अगर हमें वो बहुत प्रिय है तो हमें अर्पण करना चाहिए भगवान के लिए और फिर बांट देना चाहिए प्रसाद के रूप में। जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु हमारे पास है या जो सबसे प्रिय है हमारे, और सबसे प्रिय तो शरीर ही होता है, तो शरीर ही अर्पण करना है भगवान के चरण कमलों में। जैसे हमने पहले कहा, आजकल सब कुछ दूषित हो गया है कली के प्रभाव से। कहीं भी किसी भी प्रकार की शुद्धता या पवित्रता नहीं रही है। अभी आप कंप्यूटर इस्तेमाल की, कंप्यूटर के पार्ट्स में भी थोड़े बहुत ऐसे आइटम होंगे, पदार्थ होंगे जो वर्जित हैं, जो किसी हिंसा के द्वारा बनाए होंगे। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कई चीजें जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है, जो हमारे दैनिक जीवन में हम साधारणतः प्रयोग करते हैं, किस चीज में क्या मिलावट है हमें भी पता नहीं होता। हर जगह आजकल ऐसे मिश्रण होते रहता है, तो क्या कर सकते हैं? जहां तक हमें ज्ञान है, जहां तक प्रैक्टिकल है, हमें इनको त्यागना चाहिए। और कई बार ऐसे हो जाता है, हम कंप्यूटर को तो त्याग नहीं सकते, आजकल कंप्यूटर इतना महत्वपूर्ण हो गया भक्ति में भी, भक्तों के बीच में भी कितना प्रयोग होता है, तो थोड़ा बहुत दोष हो जाता है तो ठीक है। अभी सब जगह ऐसे है, जब अनाज आप खरीदेंगे उसमें भी दोष है, तो अनाज के बिना रह तो नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? उसको पवित्र कर सकते हैं भगवान को अर्पण करके। जहां तक हो सके शुद्ध जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए, और कई ऐसी चीजें हैं जिनको किसी भी हालत में नहीं स्वीकार करना चाहिए, जैसे मांसाहार है या हम करना है या शराब पीना है, ऐसे कोई मादक पदार्थों का सेवन करना, वो सब तो अवश्य नहीं करना है, परंतु कभी कभी ऐसे कुछ हो जाता है तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में। इसलिए हम पहले कह रहे थे प्रभुपाद जी बहुत चाहते थे ऐसे स्वावलंबी जो है कृषि समाज भक्तों के लिए हो जाए, जहां वो रहें, आपस में अपना ही अनाज उगाएं और ऐसे शुद्ध वातावरण में रहें, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध। परंतु ये सबके लिए संभव तो नहीं है। तो महत्वपूर्ण ये है कि जहां हम हैं वहां भक्ति करें, जिस हालत में है वैसे रह रहे हैं, तो फिर भक्ति करते रहे और जो दोष आ रहे हैं हमारे जीवन में शुद्ध हो जाएंगे भक्ति करने के द्वारा। लेकिन फिर भी अपनी अवस्था में जितना हो सके उतना हमें प्रयत्न करना चाहिए शुद्धता लाने के लिए। और अगर किसी चीज को हम त्याग सकते हैं, अगर हमें पता है कि इसमें कोई दोष है, अगर उसको त्याग सकते हैं तो फिर त्यागना चाहिए। आपको देखा शक्कर बनाते हैं फैक्ट्री में, शक्कर बनाने के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, हड्डियों की जो पाउडर होता है उससे वो उसको कराते हैं। तो अब कौन है जो शक्कर इस्तेमाल नहीं करता है। हर चीज में ऐसे है, जहां भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसे मिश्रण होता ही होता है, या तो उस वस्तु में होता है या उसको बनाने की पद्धति में कुछ ऐसे कुछ होता है। तो ये कलयुग है, लोगों को शुद्धता अशुद्धता का बिल्कुल विचार नहीं है, केवल ये है कि पैसे कमाने के लिए क्या अनुकूल है। अगर ऐसा स्वाद लाने से हमारा पदार्थ बिकेगा ज्यादा, हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ठीक है। और अगर इस स्वाद को लाने के लिए हमें, या इस रूप को, उस शक्कर को ऐसे हमें चमकदार बनाना है, उसको ऐसे कुछ बनाना है, इसके लिए अगर हमें कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करना पड़े या कोई करना पड़े, तो ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब जगह होता है, टूथपेस्ट में कोई बोल रहे थे क्या मिलाते हैं, अब और किसी वस्तु में क्या मिलाते हैं, तो हर जगह हर एक वस्तु में आजकल कुछ न कुछ कुछ न कुछ है। कभी ऐसे बताया जाता है कि चीज जो होता है उसमें कुछ है, कई चीज में नहीं होता, कई चीज में होता, चीज जो होता है ना, अमूल चीज वगैरह मिलता है। तो हमारे भक्त ने उस कंपनी को लिखा था चिट्ठी कि आप बताइए कि आपके इसमें आप रेनेट नाम का वस्तु डालते हैं कि नहीं, जो नॉन वेज माना जाता है, गाय की अथड़ियों से बनाया जाता है वो, और चीज को बनाने के लिए कभी कभी वो इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने लिखा नहीं हम नहीं इस्तेमाल करते हैं आदि, उन्होंने सारा दे दिया उत्तर। परंतु ऐसे कितने वस्तुएं हैं, इसलिए बेहतर जितना हो सके हमें अपनी चीजों को हमें अपने आप ही करना चाहिए। जैसे हल्दी है, हल्दी को खाने के लिए एकादशी में कोई नियम नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, वर्जित नहीं है, एकादशी में ले सकते हैं हल्दी। परंतु जो हल्दी आप बाजार में खरीदेंगे उस हल्दी में मिलावट होती है अनाज की, लेकिन उसी हल्दी को आप कूट के अगर आप खुद पाउडर बना के ले लें तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो एकादशी के दिन हम सोचेंगे हाँ हल्दी तो वर्जित नहीं है, हल्दी हम ले सकते हैं, लेकिन बाजार की हल्दी लेंगे तो फिर वो समस्या है। हर जगह ऐसे है दोष, कलयुग है, कलयुग का स्वभाव ऐसे है। धीरे धीरे से जब ये सारी सभ्यता जो है आधुनिक सभ्यता कोलैप्स हो जाएगी, तभी धीरे 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 से ये सब अच्छी पवित्र आदतें धीरे धीरे आ सकती हैं। इसलिए भक्तों को चाहिए कि बहुत अच्छी तरह से भक्ति करें, सुदृढ़ रहें, फिर सारे दुनिया को मंगलमय अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा मुश्किल लगा आपको आज का भी? मुश्किल लगा? अरे बो, हरे कृष्णा, ऐसा प्रस्ताव अच्छा है, भक्ति रसाम सिंधु।